ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5-25 दिसंबर है 2012, इस साल का ये आखिरी संध्या जागृति है। आप में से कितने लोगों को उम्मीद है कि आप लोग आगे आके बैठे? आप में से कितने लोगों को यकीन है कि आप 1 जनवरी 2013 तक जिंदा रहेंगे? हरे कृष्ण, मुझे ये यकीन नहीं है। गारंटी देना किस चीज़ का? पेपर में पढ़ा ना आपने आज, आनंद अभ्यंकर अजय पेंट से इनका पुणे हाईवे में डेथ हो गया। हाँ, टीवी कलाकार, नाटक कलाकार, उनको पता था क्या वो मरने जा रहे हैं? नहीं था पता उनको, वो तो किसी काम से निकले थे, कोई शायद क्रिसमस वेकेशन मनाने के लिए या कुछ शूटिंग करने के लिए निकले होंगे। अचानक आकर काल ने उसके ऊपर झलक भर ली, और एक क्षण के अंदर उनका अंत्येष्टि हो रहा है। कल निकले थे गाड़ी से कहीं जाने के लिए, लोनावला के लिए, आज शमशान घाट में उनको जलाया जा रहा है। आपको आश्चर्य नहीं हुआ इस बात का? कल तक तो उनका टीवी सीरियल चल रहा था, मैंने पढ़ा पेपर में, कुछ ना कुछ सीरियल, कुछ फेमस सीरियल था कुछ उसका, उसमें काम करते थे वो। कल से नहीं रहेंगे उसके अंदर, वो नेक्स्ट एपिसोड में नहीं रहेंगे, वो दूसरा ढूंढना पड़ेगा कलाकार उसके लिए। तो कुछ लोगों ने ऐसे हाथ ऊपर के कि हम लोग जीवित रहेंगे, हाँ, कोई गारंटी नहीं किसी का, कोई जीवित रहेगा कोई मरेगा, किसी की गारंटी नहीं। और आज आप लोग सब लोग, आपका आरोग्य भी स्वस्थ है, बीमारी नहीं आपको। अचानक 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा कि आपको कुछ हो गया है, कोई बोल नहीं सकता है, नथिंग। जब मेरे पत्नी को कैंसर हुआ था तो कुछ भी पता नहीं था, अचानक कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ है ऐसा, तो इतना बड़ा गांठ निकला वहाँ से, उसका टेस्ट किया तो कैंसर निकला। कोई सिम्टम नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक था। हमारे महाराज जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कब टाइम बॉम्ब फूटेगा ये कोई बोल नहीं सकता है। किस जगह पर अभी टाइम बॉम्ब रखा गया है शरीर में, लिवर में है कि किडनी में है कि हार्ट में है कि और कहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। इतना ही हमारा जीवन जो है वो अनिश्चित है। सबसे बड़ी जीवन की ये सच्चाई है कि हमारा जीवन बहुत अनिश्चित है, उसमें कोई कुछ फिक्स नहीं है, कोई है कोई नहीं है। अभी पल्सो पेपर में आया था, कल ही के पेपर में आया था, एक व्यक्ति ने गाड़ी ड्राइविंग करते करते पुलिस कर्मचारियों के परिवार को कुचल दिया, पढ़ा ना अपने पेपर में, आज के पेपर में आया, पुलिस के लोगों को ही कुचल दिया गाड़ी ड्राइविंग करते हुए। तो जो लोग रास्ते पे चल रहे थे पुलिस कर्मचारी अपने परिवार को लेके, उनको पता नहीं था कि कोई गाड़ी लेके आएगा हमारे ऊपर चला के चला जाएगा, नो गारंटी, तो मालूम नहीं किस पर क्या हो रहा है। कोई ट्रेन में बैठा है, कोई हवाई जहाज में बैठा है, कोई बस में बैठा है, कोई टैक्सी में बैठा है। ये जीवन का एक निश्चित लक्षण है। युधिष्ठिर महाराज ना, हमारे पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, वो एक बार गए थे जंगल में, जब वनवास में थे तो उस वनवास में सबको प्यास लगी, तो माता ने कहा, कुंती ने, युधिष्ठिर जाओ कहीं पानी लेके आओ पीने के लिए, सॉरी सबसे छोटे भाई को बताया पहले, सहदेव को जाओ। तो वो गया एक कुएं के बड़े ऐसे सरोवर के पास में गया, तालाब के पास, और वो तालाब के पास गया पानी लेने के लिए, नीचे झुक गया तो उसको आवाज़ आई कि सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी ले सकते हो, और अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम मर जाओगे, मरे पड़ोगे तुरंत। तो क्षत्रिय था वो, उसको कौन है, सामने आ जाओ। तो बोले मैं केवल आवाज़ से प्रश्न करूँगा, आपको उसका उत्तर देना होगा। तो इसको भी विश्वास नहीं हुआ कि अगर वो उत्तर नहीं देगा तो मर जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल गर्व के साथ में पानी लेने लगा। तो एक क्षण के अंदर वो मुर्दा होके गिर गया। उधर बहुत देर हो गई, बड़ा छोटा भाई नहीं आया। से नकुल को भेज, नकुल भाई जा देख क्या क्या हुआ, छोटा भाई आया क्यों नहीं, और तू जल भी ले गया, उसको भी ले गया। वो भी गया, पास में सर सरोवर था, वो उसके पास गया, देखा तो अपना भाई मरा पड़ा हुआ है। फिर आवाज़ आई, मेरे प्रश्न का उत्तर दो नहीं तो तुम भी मर जाओगे भाई की तरह। तो क्रोध आया, अरे ऐसा कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है। उसने भी उसको परवाह नहीं किया, जल लेने गया तो वो भी मर गया। इस तरह से बाद में भीमसेन गए, उसको भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। फिर अर्जुन गए, वो भी मर गए। फिर युधिष्ठिर महाराज गए, कुंती माता बोल रही है अरे चारों भाई गए, अब लौट के नहीं आए, अभी तुम जाओगे देख के आओ। तो युधिष्ठिर महाराज देखने गए, देखा तो क्या है, जो विश्व में सबसे बड़े विजेता है, जो आज तक किससे युद्ध नहीं हारे, ऐसे चार भाई, एक नहीं एक एक भाई भी पूरे वर्ल्ड को जीत सकता है, ऐसे एक एक भाई थे उसके। चारों भाई चार महारथी, विश्व के सबसे पराक्रमी योद्धा मरे पड़े हुए, ऐसे एकदम ऐसे असहाय होकर मरे पड़े। तो युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, उनका नाम क्या था, युधिष्ठिर। युद्ध में भी जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, कभी वो मचलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, स्थिर रहती है उसकी बुद्धि। कितना भी कोलाहल हो गया तो भी उसका दिमाग शांत रहता है। तो समझ में आया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मेरे चारे भाइयों को बिना शरीर पर कोई घाव किए हुए मार सकता है। ऐसे भी नहीं देखा भाई के शरीर पर कोई तलवार का वार है, कोई गदा का प्रहार है, या कोई धनुष बाण का चिन्ह है, या कोई खून बह गया है, या कुछ कुछ हड्डी टूट गई है, मतलब कोई मुक्की युद्ध में मारा होगा, या कोई कुश्ती में मारा होगा, कोई शस्त्र से मारा होगा, कोई अस्त्र से मारा होगा, कोई चिन्ह नहीं है। बिना किसी चिन्ह के सारे भाई मरे पड़े हुए हैं, कोई जान का लक्षण नहीं उनके अंदर। तो समझ गया अगर मेरे चार महारथी भाइयों को कोई ऐसे बिना कुछ शरीर को स्पर्श किए मार सकता है तो कोई बड़ी शक्ति होगी। तो उसको भी आवाज आई, युधिष्ठिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं दोगे तो चारों भाइयों जैसे तुम्हारी भी अवस्था होगी। तो वो खड़े हो गए, बोले प्रश्न करो। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, नीति के बारे में, हाँ जीवन के बारे में बहुत प्रश्न पूछे। और हर एक प्रश्न का इत्मीनान से शांति से युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया। तो जो प्रश्न पूछने वाला आवाज था बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हूँ, और आपने जिस नम्रता से उत्तर दिया है उससे मैं अधिक प्रसन्न हूँ। अभी मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का जवाब आप सही दोगे तो आप इस सरोवर का जल भी ले सकते हो और आपके चारों भाई भी जिंदा हो जाएंगे। होता ना फाइनल मैच होता ना, दो मैच हो गया है, चार हो गया है, इसमें दो और दो इक्वल हो गया है, अभी लास्ट मैच, लास्ट में हारेगा तो पांचों हार जाएगा और जीतेगा तो सीरीज जीत जाएगा। हाँ कभी बोलते लास्ट ओवर, एक बॉल और तीन रन निकलना है, एक फोर मारना है, सिक्सर मारना है, नहीं मारेगा तो हार जाएगा, मार जाएगा तो जीत जाएगा, या तो इस पार या उस पार। तो ऐसा भयंकर प्रश्न का आखिरी समय आया और उस आवाज ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, आपको आपको पता है इसका उत्तर, किसी किसी को मालूम है? यस प्रभु जी, हाँ धर्मराज ने उसका उत्तर दिया कि सब जगह पर मृत्यु हो रही है, सब लोग जो जन्म ले रहे हैं वो सब मर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। अहनि अहनि विश्वानि, वो संस्कृत श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, उसको पूरा याद नहीं अभी। उसका अर्थ यह है कि ये दुनिया जो है ना, इसका नाम रखा गया है मर्त्यलोक। मर्त्यलोक का मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए, मर्त्यलोक यानी जहां पर मृत्यु होती है उस लोक को कहते हैं मर्त्य लोक, और हम सब लोगों ने मर्त्य लोक में जन्म लिया है, इसका मतलब हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी हम यकीन के साथ कहते हैं कि हम जिंदा रहेंगे, 1 जनवरी 2013 को जिंदा रहेंगे, हो सकता है जिंदा रहेंगे हाँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगर आनंद अंबेडकर को आप कल पूछते 1 तारीख को आप कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि मेरा रविंद्र नाट्य मंदिर में शो है, ऑलरेडी बुक है, वहाँ मेरा नाटक होगा, दोपहर को वहाँ रहूँगा मैं। 10 जनवरी को कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा होगा, वो कहते थे शायद मोस्टली कह दिया होगा उन्होंने कि मेरी शूटिंग है 10 तारीख को, इस ड्रामा की सीरियल की शूटिंग है। लेकिन आज वो कह सकते हैं, वो पूछने के लिए भी अवेलेबल नहीं हो। तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम जब जिंदा हैं तो हमको लगता नहीं कि हम मरेंगे, कम से कम 5 साल तो नहीं मरेंगे कम से कम 10 साल तो नहीं मरेंगे। कोई 20 साल का लड़का रहेगा तो वो बोलेगा कम से कम 50 साल नहीं मरूंगा। मैंने लास्ट मेरे लेक्चर के अंदर, नर्सेस के लेक्चर के अंदर एक प्रश्न पूछा था कि एक नाम नहीं लूंगा उनको, पूछा कि आपको क्या लगता है आप कितना साल जिएंगे, तो उन्होंने कहा 2035 तक तो मैं आपको गारंटी है, हाँ गारंटी है आपको, हाँ ऐसा अंदाज है, बस इतना ही आपका लाइफ है इसके आगे, तो हाँ अंदाज है कि 2035 तक मैं रहूँगी और मैं मर जाऊँगी लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको 1 सेकंड का भी गारंटी नहीं कि हम जिंदा रहेंगे, बिल्कुल गारंटी नहीं। अमेरिका में वो दिन आया ना, सैंडी नाम का तूफान आया, हाँ पता चला था पहले आया था, इसलिए लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया था उन्होंने, लेकिन आधा अमेरिका व्याप्त कर चुका था वो तूफान। और अमेरिका देश जो है भारत के 4 गुना बड़ा है, भारत से 4 गुना बड़ा है वो, एक एंड से दूसरे एंड तक अगर समय गिनेगा समय तो 3 घंटे का अंतर है। इस शहर में जाओगे तो 9 बजे होंगे, उस समय पे उस कोने में जाओगे तो 12 बजे होंगे, इतना बड़ा शहर देश है। वो देश आधा व्याप्त कर लिया सैंडी तूफान ने और कोई रोक नहीं पाया, उनका टेक्नोलॉजी, उनका इतना सारा आधुनिक चीज़ जो है ना उसको रोक नहीं पाया। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी 2012 साल भी अंत हो चुका है। बीच में एक दिन ऐसा आया था कि 1999 का दिसंबर आया था, सब लोग बोल रहे थे अभी 2000 शुरू हो जाएगा, Y2K ईयर 2000। तो हम लोग जो है वो पिछली सदी में भी थे, इस सदी में 12 साल बीत चुके हैं, रह रहे हैं हाँ। लेकिन हर साल जब 1 जनवरी आता है तो वो क्या बताते हैं हमको कि पिछला साल चला गया है और नया साल अभी शुरू हो रहा है। और जब हर 1 जनवरी आता है तो एक साल, 1 जनवरी जब आता है तो सच्चाई क्या होती है, एक और साल तुम्हारे जीवन से समाप्त हो चुका है। मतलब एक और साल अभी तुम्हारे पास कम है पहले से, है ना, निश्चित रूप से 1 साल बढ़ गया क्या अभी, नहीं ना, 1 साल कम हो गया है, हमारी उम्र 1 साल से बढ़ गई। किसी किसी का बर्थडे जनवरी में आएगा, किसी का फरवरी में आएगा, किसी का मार्च में आएगा, किसी का नवंबर में आएगा, लेकिन 1 साल आपकी ज़िंदगी में अभी और कम हो गया है। तो प्रश्न ये है, एनीवेज तो उसके बाद जब उत्तर दिया उन्होंने ये प्रश्न का, तो वो आवाज़ बहुत प्रसन्न हो गई, तो आवाज़ वो प्रकट हो गई, वो कौन थे, यक्ष थे, यक्ष, और यक्ष वो धर्मराज स्वयं थे, मतलब जो युधिष्ठिर महाराज के पिताजी थे देवता, वो स्वयं प्रकट हो गए धर्मराज। उन्होंने आशीर्वाद दिया धर्मराज को कि तुम बड़े विचारशाली, विचारशील, धर्मशील, संयमशील और नम्र हो, हाँ इतने बड़े चक्रवर्ती युवराज होने पर भी तुम्हारे अंदर नम्रता है, इसलिए तुम्हारे भाइयों को मैं जिंदा कर देता हूँ। सारे भाई जिंदा हो गए और फिर जल भी लेके चले गए घर पे, और पूरी कहानी माता ने बताई। ये जो युधिष्ठिर महाराज का वाक्य है बहुत समर्पक वाक्य है, हम सब लोग उस वाक्य के प्रमाण हैं, वो जो कह रहे हैं उसके प्रमाण हम सब लोग हैं, हम लोग जीवित हैं, हम लोग आज कल कल परसों हफ्ते में 1 बार 15 दिन बार रोज यहाँ हॉस्पिटल में मृत्यु देखते हैं। और अगर हॉस्पिटल में आप काम भी नहीं करते होते ना, फिर भी आपके पड़ोस में अड़ोस में इधर उधर मृत्यु होती रहती है, आए दिन आपको कभी कभी अंत यात्रा दिखाई पड़ती है, हम लोग नमस्कार भी करते हैं, है ना, कंधे पे लेके जा रहे हैं, तो बुधवार के दिन है, कभी गुरुवार के दिन, कभी शनिवार के दिन देखते हैं, कभी कभी हमको जाना पड़ता है, हमारे घर के रिश्तेदार कोई या वहाँ के होंगे, हॉस्पिटल के मरीज से जाते नहीं हम लोग, लेकिन बिल्डिंग में कुछ हुआ, अगर कोई रिश्तेदारी में हुआ जाते हैं शमशान में, वहाँ पर हमको जाना पड़ता है, वहाँ पर देखते हैं, मुर्दे को लेते हैं, हार उतारते हैं, फिर खाली बॉडी को उठाते हैं, फिर वो रखते हैं लकड़ी के ऊपर, फिर उसके ऊपर लकड़ी रखते हैं, मुँह के ऊपर, पाँव के ऊपर, सब जगह, हाँ वो शेणी है ना, शेणी गोवरिया भी रखते हैं, फिर कापूर डालते हैं उसको, फिर कोई लड़का आता है अग्नि का डंडा लेके गोल गोल घूमता है और मुख को अग्नि देता है, और सब खड़े देखते हैं, जल रहा है बॉडी पूरा, इतनी बड़ी बड़ी ज्वाला निकल रही है, हाँ जमीन से 5 फीट तक लकड़ी है, 7 फीट तक, 12 फीट तक आकाश में ज्वाला चल रही है, फिर कोई वो दवा डालता है उसके अंदर, पाउडर डालता है, वो क्या राड़ बोलते हैं उसको, वो डालते हैं, फिर वो अग्नि जलाता है उधर से, वहाँ से कपूर डालता है, हाँ और कुछ देर बाद में सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं है, बोलेगा आप 8 घंटे के बाद आ जाओ कल सुबह 6 बजे अस्थि लेके जाओ, फिर कल सुबह जाएंगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लकड़ी नहीं है ना, आदमी था वो भी नहीं है, सब गायब, कुछ थोड़े टुकड़े मिलेंगे पड़े हुए, थोड़ा बहुत इधर हड्डी वड्डी, उसको इकट्ठा करना है, मटके में डाल के लेके जाना है, फिर अगले हफ्ते में जाना है नासिक को गोदावरी में उसको बहाने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, उस व्यक्ति का कोई नामो निशान भी नहीं बचेगा यहाँ पर, हड्डी की पाउडर जो है वो भी नदी में प्रवाहित की जाएगी, उसका मंत्र बोला जाएगा, श्राद्ध किया जाएगा, समाप्त, रोना धोना भी समाप्त हो जाएगा, जितना रोना है वो लोग रो लेते हैं 4-5 दिन तक, बाद में अपने अपने काम पे चले जाते हैं, किसी को टाइम नहीं, अपना अपना ड्यूटी सबको करना है। तो मराठी में एक हमारी बचपन में एक पोएट्री थी, पोएट्री कविता स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, वो ऐसे उसके शब्द थे, जन पड़ भर मणतिल हाय हाय, मी जाता राहिल काय काय, मैं जब मरूंगा तो 2 दिन के लिए लोग रोएंगे इधर उधर पूछ के, क्या हुआ, गया निकल के ऐसे वैसे, लेकिन उसके बाद में क्या, सब लोग भूल जाएंगे, अपने अपने काम पे चले जाएंगे, फिर उनमें से भी कोई चला जाएगा, फिर कुछ दिन लोग रोएंगे, फिर अपने काम पे चले जाएंगे, ऐसे सब लोग जितने आते हैं सब लोग चले जाते हैं, और हमारे चले जाने का भी हमारा एक प्रूफ है हमारे अंदर कि हम भी जा रहे हैं। तो क्या प्रूफ है, कल बाल सफेद थे आज, कल बाल काले थे आज सफेद हो गए, कल बाल थे आज नहीं है, ऐसा भी होता है ना। इस हमारे अंदर भी कुछ लोग सफेद बाल वाले हैं, कुछ काले बाल वाले, ये भी क्या है, हमारे अंदर जो जीवन था पहले 20 साल में, इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी, हाँ 5 माला भागते थे हम लोग, ऊपर भाग सकते थे, 2-4-5 घंटा क्रिकेट खेलते थे, थकते नहीं थे। अभी इधर वो दिन मैं खेलने गया था तो मुझे रनिंग करने को भी नहीं हुआ, मुझे रनर लेना पड़ा, बोले मैं बैट चलाऊंगा आप भागो। ये किसका लक्षण है कि जो जीवन हमारे अंदर था वो हमारे अंदर आज नहीं रहा, अभी भी जीवन है लेकिन जो जीवन पहले था वो नहीं है। सही बात है ना, हम देखते हैं बच्चों को, इतने से बच्चे रहते हैं, उनका वजन 15 किलो रहता है, दिन के 15 घंटे खेलते हैं वो, इतना कूदते हैं, इतना खेलते हैं, खाने पीने की याद नहीं रहती उनको, इतना कूदते हैं, वो शक्ति कहाँ से आती है, शरीर तो इतना सा है उनका, कोई व्यायामशाला में गए के मसल कमाया भी नहीं, इतना इतना नाजुक नाजुक नरम नरम हाथ और पाए उनके, कितना कूदते हैं वो, कितना कूदते हैं दिन भर, मुझे पता नहीं चलता है कि इसके अंदर लीवर भी इतना सा है, हार्ट भी इतना सा है, किडनी भी इतनी सी है, दिमाग भी इतना सा है, शक्ति आती किधर से है? वो भगवान की कृपा है कि भगवान ने अभी जीवन दिया है तो उस जीवन में इतना शक्ति दिया है बचपन की अवस्था में, फिर बड़े हो जाएंगे फिर और शक्ति बढ़ेगी, लेकिन धीरे 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 आपको समझ में आएगा वो शक्ति कम 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 होती जा रही है, समय के प्रभाव से जो भी हमारे अंदर शक्ति है वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगी, यहाँ के हमारे याददाश्त वो भी कम हो जाएगी, हमारी शक्ति कितना घंटा करने की शक्ति थी पहले, अभी थकान होती है, अभी नहीं होता है, पांव दुखने लगते हैं, पीठ दुखने लगती है, इसका मतलब शरीर के अंदर जो जीवन है वो समाप्त होते जा रहा है, और ये किसका प्रभाव है, वो काल का प्रभाव है, काल हमसे सब कुछ छीन लेगा, हमारा यौवन, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति सब कुछ छीन लेगा। आज हम सुंदर हैं तो कल हम शरीर पे झर्रे पड़ जाएंगे। हाँ, हमारा आज चेहरा एकदम चकचकीत है, फिर यहाँ पर लाइन आ जाएगी, इधर लाइन आ जाएगी, फिर इधर लाइन आ जाएगी, इधर हंसेंगे तो इधर चार लाइन पड़ेगी, कपाल में चार लाइन पड़ेगी। एक समय ऐसे आएगा कि हम लोग शांत बैठेंगे तो भी यहाँ चार लाइन दिखेगी, यहाँ चार लाइन दिखेगी, बैठे बैठे हंसने की जरूरत नहीं है। सब कुछ लेते जाते हुए नजर आएगा। तो क्या करना चाहिए हमको? जब तक जिंदगी है तब तक भगवान के चरणों में शरण लेनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको पूछा कितने साल हो गए, तो आपके लिए 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, लेकिन हम लोग अभी एक ही माला कर रहे हैं। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपको सबके सामने? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको भगवान का परिचय होके 12 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए, लेकिन अभी हमारे अंदर अभी भी वो विश्वास नहीं उत्पन्न हुआ है कि हमारे पास समय बहुत कम है। हमको अभी तक ये यकीन नहीं है हृदय में कि हमारे पास समय नहीं है, हमको दोबारा लौट के इस दुनिया में नहीं आना है। ऐसे हजारों साल नए नए आते हुए हमको देखना नहीं है। 2013 देखेंगे, 2025 भी देखेंगे, 2050 भी देखेंगे, हाँ 2099 देखने की इच्छा है क्या आपको? तब तक जिंदगी कितनी खराब हो जाएगी। वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड आज का आप पढ़ रहे हैं ना पेपर में, क्या क्या रेप हो रहे हैं, इधर लड़ोक छेड़छाड़ हो रही है, खून खराबे हो रहे हैं, कितना जिंदगी असुरक्षित हो गया हमारा। कोई कह सकता है कि हम रास्ते पे जाएंगे तो हम लौट के आएंगे, कोई लूट लेगा आपको, कोई हमला करेगा आपके ऊपर? अरे उस दिन पेपर में ऐसा खबर आया था कि किसी को अपनी पत्नी को मारना था तो किसी और को ही मार दिया उसने, उसको पत्नी का इतना उसको मन में द्वेष था कि उसको वो रास्ते में पकड़ के उसको मार डालना था उसको, तो वो उसकी माँ के घर में रहने के झगड़ा करके गई थी। पढ़ा होगा ना आपने पेपर में, दादर में वो शाम को आती थी अपने ट्रेन से माँ के घर में जाने के लिए, तो वहां पर आके खड़ा हो गया वो, तो उसके ही जैसे बुरखा ऐसे कपड़ा बांधी हुई, उसके जैसे पैंट पहनी हुई, उसके जैसे टी शर्ट पहनी हुई एक औरत जा रही थी, जो उसने अपनी पत्नी को पहले पहने हुए देखा था ऐसे ही कपड़ा पहन के एक औरत जा रही थी। आप देखे ना, धूल होते रास्ते पे बहुत, तो लोग कपड़ा बांधते हैं पूरा नाक और कान पे, धूल नहीं आने चाहिए। ऐसे एक लड़की आई तो वो झट से आया और कोयता लेके छप्पा छप वार करके उसको वहाँ ही ख़त्म कर दिया उसने। बाद में उसको पता चला कि वो कोई और ही थी, और उसकी जो असली पत्नी थी उसने टीवी पर देखा, अरे मेरे पति का नाम आ रहा है, अरे उसने इसको मार दिया। क्यों मार दिया? मुझे मारने के लिए समझ के उसने उसको मार दिया। कितना जीवन असुरक्षित है, उसका कोई कनेक्शन नहीं, ना उसकी पत्नी है, ना झगड़ा है उसका, ना कुछ नहीं है। लेकिन मृत्यु कैसे आ सकती है, कोई बोल सकता है क्या? कितनी आश्चर्य की बात है, कोई कारण ही नहीं मरने का उसको। लेकिन कर्म धर्म संयोग से उसने वैसा ही कपड़ा पहना था जैसे उसकी बीवी बनती थी, और उसने ना आगे देखा ना पीछे, सीधा हमला कर दिया उसके ऊपर। इतना हमारा जीवन असुरक्षित है, कभी भी किसी भी समय हमारे ऊपर हमला, मृत्यु, धोखा, दुर्घटना हो सकती है। कोई नहीं कह सकता कुछ, कब बचेगा कोई, कौन जाएगा। वो एक आनंद पिक्चर था हमारे बचपन में, हाँ वो हमने कम से कम 10 बार देखा है, मैंने खुद, इतनी सुंदर पिक्चर थी। कभी आप भी देख लेना उसको, बहुत सीखने को मिलेगा आपको उसके अंदर। उसमें वो आनंद नाम का था किरदार, राजेश खन्ना, वो कहते हैं कि जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में है, हम सब उनके हाथ की कठपुतलियाँ हैं, कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता। हा डायलॉग था उस पिक्चर में, और कई बार वो डायलॉग रिपीट करते हैं पिक्चर में कि जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में, कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता। और हम सब लोग एकदम आराम की जिंदगी जी रहे हैं ये सोच करके। अभी देखो विलास सपकड़ हमारे हॉस्पिटल में थे, तभी उनकी मुझे काली काली थी, अभी सफ़ेद दौरे में देख रहा हूँ, हमारे सामने ही का ये अंतर है कुछ सालों के बीच में। मैं कुछ साल और प्रवचन देते रहूँगा तो कुछ लोगों को और सफ़ेद होते हुए देखूँगा, और मैं भी देखूँगा आईने में, मैं भी सफ़ेद होते जा रहा हूँ। हाँ सफ़ेदी ये समय का प्रभाव है, हाँ काला रंग का सफ़ेद हो जाता है। मराठी में कहते ना होत्या से नौत झालं, बोलते ना मराठी में अपन, हाँ तो ये सब सच्चाई है जीवन की। अभी हमारी मीना वड़े माता जी यहाँ बैठी हुई है, हाँ, उनका लड़का पतंग उड़ा रहा था टेरेस पे और पतंग उड़ा रहा था, गिर गया वो, तो भगवान के पास चला गया। कोई बोल सकता है क्या, कितने लोग पतंग उड़ाते हैं, कोई जानते हैं क्या कि मैं पतंग उड़ाऊंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसा होता है कभी? लेकिन हुआ है, होते जाता है। तो हम किस यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम भी रहेंगे और अगले साल का नया सूरज देखने के लिए जीवित रहेंगे, अगले साल एंड में भी जीवित रहेंगे और उसके अगला साल जो जीवन नया आएगा उसके भी जीवित रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? क्या हमने सीखा है, हमने जितनी मृत्यु देखी है, हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, कितने लोगों को हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी में, कैजुअल्टी में, आईसीयू में, इधर में उधर में मरते हुए देखते हैं, क्या हमने बोध लिया उनसे, क्या देखा है उसके अंदर, क्या समझा है कि जीवन कितना अनिश्चित है? बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर हमारे हॉस्पिटल में भाईंदर में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें से 44 मरीज यहाँ पर आए थे, उसमें से एक मरीज था 26 साल का, जवान ऑफिसर था, एकदम अच्छे कंपनी में काम करता था वो, उसकी पत्नी 24 साल की थी और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था, जस्ट शादी हुई थी उनकी 6 महीने पहले और जस्ट 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, अभी अभी शादी का 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है और उसका पति जो है वो आईसीयू में एकदम मतलब मर ही गया था वो, थोड़ा सा ही बाकी था, कुछ घंटे के लिए जीवित था वो, और रोते जा रही थी वो, कैसे अभी कैसे सहन करूंगी मैं, तो उनको बताया कि वो गया, अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है उसका, अभी जाके रोने के बदले में उसको जाके हेल्प करो, उसका हाथ पकड़ो, उसके लिए भगवान का नाम लो, उसके भगवान से प्रार्थना करो, उसको हौसला दो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे से लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम जा रहे हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में खड़ी हूँ, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान तुम्हें बड़ी आसानी से अपने पास ले जाए, उसको हिम्मत दिला गया। बाद में पति का देहांत हो गया, अभी क्या पता था उनको शादी करने के टाइम पे कि 6 महीने में मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? कोई प्लानिंग ऐसा करता है क्या? अच्छी शादी का है, धूमधाम से इंतजार कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उनको पता है कि हम 6 महीने के बाद मरने वाले हैं, ऐसा होता है कभी? वो तो पूरी ज़िंदगी का प्लानिंग करते हैं उसमें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग, एक पेपर में हमारे कथा पढ़ी थी मैंने, एक असली कहानी, कि एक बारात निकल के जा रही थी शादी की, 2 बसें की थी उन्होंने, पूरा दिन धूमधाम शादी की के जा रहे थे और दूल्हा दुल्हन सज धज के बस में बैठे थे, उनकी माता बैठी थी, उनके पिता बैठे थे, भाई बहन बैठे थे, यहाँ की पार्टी वहाँ की पार्टी, और सब 2 बसें मिलकर जा रहे थे बारात दूल्हे के घर पे विदाई करने के लिए। अचानक दूल्हे की माँ जग गई, ऐसे जग रात को जग गई वो बस में 1 बजे, तो उसे बहू जो उसकी नई बहू है वो रोते हुए नजर आई, तो उसने बोले बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? तो वो कहती है सासू को कि मेरे पति नहीं रहे, वो गुजर गए। बोला क्या बात कर रही हो, तो बैठा है तुम्हारे बाद में, देखो माँ नहीं है। तो उसने लाइट जलाया बस का एक, और देखा तो सच में उसका पुत्र जो है नई नई शादी बनकर दूल्हा बनकर बस में बैठा था, उसको हार्ट अटैक आके वो वहीं समाप्त हो गया। अभी क्या करें, 2 बस में लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सोए हैं अच्छी तरह से, रात को बस भी चल रही है आगे। तो उसने क्या किया, उसने अपने दूसरे पुत्र को जगाया, उसको बताया कि ये सब सच्ची कहानी है, तो आपको यकीन नहीं होगा ये सच कहानी है। वो माता इतनी बुद्धिमान थी, उसने एकदम अपना संतुलन नहीं खोया, उसने दूसरे बेटे को जगाया, बोला बेटा तुम्हारे भाई की शादी हुई थी, वो अभी नहीं रहा, देखो बाजू में बैठा है। तो उसने भी हिलाया, देखा कि वो ख़त्म हो चुका है। तो उसने कहा कि अभी ये लड़की जो है अभी एक दिन भी नहीं हुआ शादी का हुआ उसका, एक दिन भी पूरा नहीं, 24 आवर्स पूरा नहीं हुआ उनका, घर पहुँचे नहीं हम लोग अभी तक, और वो विधवा हो जाएगी तो उसका कैसा होगा। तो मेरी तुमको ऐसी सूचना है या इच्छा है या ऑर्डर है, कुछ भी बोलो माँ के रूप में, कि तुम इससे शादी कर लो। तो कुछ देर बातचीत हुई, प्रसंग की गंभीरता को लड़का भी समझा कि बहुत भयंकर प्रसंग है ये, किसी के जीवन का भी प्रश्न है ना इसके अंदर भी, एक तो गया लेकिन उसका जीवन का क्या। तो कुछ देर बाद वो राजी हो गया, तो उन्होंने 2-4 लोगों को और उठाया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, उसके कपड़े दुल्हन दुल्हा के कपड़े उतारे और उसको पहनाए और उसको बाजू में कर दिया और उसको बिठाया वहाँ पर, लड़के को भी समझाया, काफ़ी समय गया इसमें, सब लोग सो के गाड़ी चल रही है, जहाँ पर पहुँचने वाले हैं वहाँ पर भी लोग स्वागत के लिए रेडी है। अगले दिन सब रंगोली डाल के, तोरण लगा के, फूल लगा के, सब लोग दीपक जला के वेट कर रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन आएंगे, हाँ गृह प्रवेश होगा उनका, जो चावल का माप रखा गया उसको गिरा कर आगे चले जाएंगे, फिर बहू का आगमन होगा लक्ष्मी का। तो किसी को पता नहीं चला क्या हुआ है, क्योंकि माता ने क्या किया, वो था होता ना वो पंजाबी लोगों में ऐसा पूरा फूलों का ऐसा होता है दुल्हन के और दुल्हा के चेहरे के ऊपर, पूरा चेहरा जो है ना मालाओं से ढक देते हैं पूरा कम्प्लीटली। घोड़े पर भी बैठता है ना दूल्हा, तो उसका पूरा चेहरा जो है ना वो फूलों से माला से भरा रहता है। तो किसी को पता नहीं चला और दोनों मिलके गृह प्रवेश किया उन्होंने, पूरा विधि विधि पूरा हो गया और आखिर में कुछ घंटे के बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि उसका देहांत हो गया, अभी ये इनके पति हैं। अभी आपको लगेगा ये तो अच्छी कहानी है, कोई फिल्म बन सकती है इसके ऊपर, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की। ये सब कुछ जीवन में होता है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुलती है और हम लोग फिर भी जीवन में टाइम पास कर रहे हैं, चल रहा है जीवन ऐसे ही। हमको जगना चाहिए, ये साल का जो एंड हो रहा है ना, ये हर साल के एंड में हमको टेंशन आना चाहिए, एक साल और भी गया, कितने भगवान के पास गए हम, अरे ज़्यादा नहीं गए, बहुत दूर है अभी तो, यहीं फंसे हुए हैं अभी तक। हमको भगवान के नाम में रुचि नहीं है, अभी तक हमको भगवान के लिए आकर्षण नहीं है, भगवान के विषय में हमको कुछ रुचि लगती नहीं है, कुछ करें भगवान के लिए, यात्रा चले जाएं, कुछ मंदिर चले जाएं, कुछ कथा सुने, कुछ गीता पढ़े, हाँ भगवद गीता का उपदेश सुने, भगवान ने क्या बताया हमारे लिए, कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं पैदा हुआ है अब तक। और साल के साल बीतते जा रहे हैं, हाँ हम उत्सव मनाते हैं जब भी कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक अट्रैक्शन नहीं हुआ है, इतना अट्रैक्शन नहीं हुआ भगवान से कि वो गारंटी करें कि हम मर जाएंगे तो तुरंत उनके पास जाएंगे, इतना अट्रैक्शन नहीं हुआ है। ऐसा है तो अच्छी बात है, आराम से रहो, क्योंकि गारंटी है जब भी मरोगे भगवान के पास जाओगे। वो संतों का जीवन ऐसा होता है, संत कैसे रहते हैं, कभी भी मृत्यु आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी मरेंगे तो सीधे भगवान के पास चलेंगे, वो टिकट कट चुका है ऑलरेडी, हमारा टिकट कटा नहीं अब तक, हमारा कन्फर्म टिकट नहीं है अब तक, वेटिंग में भी नहीं है, उन्हें बुकिंग ही नहीं किया तो कैसे वेटिंग में आएगा वो, हाँ जब बुकिंग करेंगे तो वेटिंग में आएगा ना, फिर RIC में जाएगा, फिर कन्फर्म होगा, फिर अंदर जाएंगे हम, हमारा कुछ भी तैयारी नहीं है, इसलिए हमको डरना चाहिए। हकीकत तो यही है, कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता, है ना, दिस इज गारंटीड 100%। अभी बन के हम बैठ के यहाँ पर मंगलवार को 25 दिसंबर को हम बड़ी कथा कर रहे हैं, अगले क्षण में अगले मंगलवार को कथा करने के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई नहीं बोल सकता है, नोबडी कैन से। और अगर नहीं रहेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु लोक में क्या निश्चित है, हाँ मृत्यु निश्चित है, उसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कोई भगवान ने हमको सरप्राइज नहीं दिया है, पहले ही बता के भेजा है कि आपको यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा एक दिन निश्चित रूप से, जन्मना जाए थे क्या कहते हैं उसको, एक श्लोक है भगवद गीता में, उसका अर्थ यह है कि जो जन्म लेता है वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करता है, और जिसकी मृत्यु होती है वो निश्चित ही दोबारा जन्म लेता है। अगर वो भगवान का भक्त बन गया है तो दोबारा जन्म लेगा वो, लेकिन भगवान के धाम में लेगा, अगर भगवान का भक्त नहीं बना है तो दोबारा यहाँ पर आएगा, और फिर मनुष्य का हो या पंछी का हो या जानवर का हो या कीड़े मकोड़े का हो या सांप का हो या पेड़ का हो, जन्म लेगा दोबारा, और दोबारा यहाँ पर धक्के खाएगा, कष्ट भोगेगा, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर बीमारी, फिर बुढ़ापा, फिर ये तकदीर का कष्ट जो है, कभी भूकंप आएगा, कभी तूफान आएगा, कभी आंधी आएगा, वो कष्ट भोगेगा, फिर रोग का कष्ट भोगेगा, फिर कोई परिवार का, कोई पड़ोस का, सब कष्ट भोगते रहेगा वो, मन का कष्ट भोगेगा, शरीर का कष्ट भोगेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा, फिर तैयारी नहीं किया तो दोबारा आएगा, ऐसे चलते चक्र जो है वो चलते रहता है। हमारा उद्देश्य यह है कि ये चक्र हमको अभी छेदना है, इस चक्र को छेद कर हमको दोबारा मृत्यु के, दोबारा जन्म के चक्र में नहीं पड़ना है। इसी जन्म के अंत में, क्योंकि इस जन्म में हमारा भगवान से परिचय हो चुका है, इसी जन्म में हमको अभी ये चक्र को छेद कर, चक्र को लांग कर भगवान के पास जाना है। लेकिन कहने से हम नहीं पहुंचेंगे ना वहां पर, हमने कहा आपने सुना इसलिए आप पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की तैयारी हर एक व्यक्ति को करनी है। आपको कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। बच्चा ने कभी बोला होगा ना आपको, पापा पेपर बहुत हार्ड है, ये पेपर आप लिखो, मैं घर पर बैठता हूँ। मेरे मन में बहुत इच्छा होती थी चौथी क्लास में, बहुत ऐसी इच्छा होती थी कि मेरे भाई जो मुझे पढ़ाते थे ना मैथ्स, वो इतने एक्सपर्ट थे, उनको हर मैथ्स का हर सम आता था, मेरे को नहीं आता था, मैं उनको पूछता था तो वो तुरंत उसको सॉल्व करते थे। तो मेरे मन में से बहुत आता कि क्यों ना मेरा पेपर मेरे भाई लिखेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, एकदम फर्स्ट रैंक आएगा मेरा। ऐसे मुझे कई बार लगता था कि मेरे दो भाई, एक साइंस एक मैथमेटिक्स में इतने एक्सपर्ट थे, अगर वो मेरे पेपर बैठने को लेकर बैठ जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बच्चा कितना भी डब्बू रहेगा या कितना भी होशियार रहेगा, उसका पेपर उसको ही लिखना है, आप नहीं लिख सकते। उसके हॉल टिकट पे आप जाके नहीं बैठ सकते उधर। चलो ये मैथ्स के लिए श्रीजी प्रिया और साइंस के लिए श्वेता, हॉल टिकट में एंट्री नहीं मिलेगा आपको उधर। जिसका नाम पे हॉल टिकट बना है उसी का एंट्री मिलेगा, उसको पेपर लिखना है। कितना भी आपको घर से दोबारा तीन बार रिविजन किया गया है और चार पांच एक्सपर्ट टीचर लगाए गए हैं, एक एक लाख का ट्यूशन लगाया गया है, क्लास में भेजा गया है, फिर भी इतना सारा सपोर्ट होने के बाद भी एग्जाम के हॉल पे उस नंबर के सीट पर जाकर केवल आपको बैठना है और पेपर केवल आपको लिखना है। उसी तरह से आपके पिताजी संत रहे, कोई इसके मेंबर है क्या यहाँ पर? कोई मेंबर है उस ग्रुप के? नहीं ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कितना भी सपोर्ट रहेगा इस जीवन में, आप संत के पुत्र होंगे, संत आपको गुरु के रूप में मिले होंगे, जीवन भर तपस्या आपने किया होगा, जीवन भर जप किया होगा आपने, लेकिन मृत्यु की एग्जाम आपको अकेले देनी है। ये दुनिया के एग्जाम में एक हॉल में 50-60 परीक्षार्थी बैठते हैं एक साथ में और अपना अपना पेपर लिखते हैं, कम से कम कोई ना कोई आपके साथ में है लिखने के लिए, लेकिन मृत्यु की परीक्षा में आप सब अकेले रहेंगे। और जीवन भर में आपने जो भी कुछ प्रयत्न किया है भक्ति में, वही आपका हाथ में धन रहेगा उस समय, उसी के ऊपर आपका गति निश्चित होगा। आप यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, दोबारा लौट के आएंगे कि भगवान के धाम में आगे चले जाएंगे। सबको आपकी परीक्षा अकेले देनी है, उसमें कोई किसी का साथ नहीं होगा। केवल आपने किया हुआ जो भक्ति है, जो आपने कमाया है भक्ति का धन, वही आपके साथ रहेगा। और जितना अधिक धन रहेगा भक्ति का, उतना अधिक गति से भगवान के पास आप जाएंगे। और जितना आपका पापों का बोझ रहेगा आपके साथ में, उतनी गति से नीचे जाएंगे, है ना। जिसका वजन कहाँ ज़्यादा है उधर जाएंगे, उधर नीचे फिसल जाएंगे। जिस जगह वजन है वहाँ पर चले जाएंगे, वजन जहाँ कम होगा वहाँ नहीं जा सकते। ज़्यादा वजन कहाँ पर है उसको उधर लेके जाएगा वो। इसलिए हमको जगना है। हाँ, लोग पागलों की तरह इस न्यू ईयर के शाम को दारू पियेंगे, बेशा के पास जाएंगे, सब प्लानिंग करते, ये पार्टी करेंगे, डांस पार्टी, बूज पार्टी, रेव पार्टी, ड्रग पार्टी, हाँ नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, पिक्चर देखेंगे। जितने ऐसे कहते हैं कि साल भर के अंदर जितना पाप नहीं होता है वो एक दिन में होता है 31 दिसंबर को, इतना पाप का राशि दुनिया का बढ़ जाता है उस दिन। सब लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, भोग का प्लानिंग करते हैं, पाप का प्लानिंग करते हैं। और भक्त लोगों को दया आती है, इसलिए वो क्या करते हैं, जब सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे, इधर लोनावला पे, इधर उधर सब जगह लोग अपने रूम वूम बुक करके पार्टी वार्टी करने का प्लानिंग करते हैं और पार्टी करते रहते रात भर, तब भक्त लोग ना हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं कि उनका पाप जरा बोझ जो मृत्यु का है वो कम हो जाए। सब लोग दारू पे के नाच रहे हैं, लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे हैं, और यहाँ पर भक्त लोग 4-5-15-20 लोग हैं गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, कीर्तन इधर उधर जो होटल में जहाँ जहाँ लोग बड़े बड़े लोग पार्टी करते हैं वहाँ जाके कीर्तन करते हैं रस्ते पर, ताकि वो हरिनाम का जो प्रभाव है कम से कम भगवान की कृपा कहीं ना कहीं उन पर पहुँचेगी, थोड़ा बहुत पाप करेंगे कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वातावरण जो पाप से भरा हुआ है थोड़ा बहुत भगवान के नाम से गूंजेगा तो पाप का प्रभाव थोड़ा नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर का इतना बड़ा बोझ जो पाप का है वो भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, हर जगह पर लोग इतना भयंकर पाप करेंगे उस दिन। और भक्त लोग क्या करते हैं, जानबूझ के 31 दिसंबर की शाम को भक्तिवेदांत हो या मंदिर हो या किसी के घर में हो, कुछ ना हो, वो भक्तों को बुलाएंगे और जोरदार कीर्तन करेंगे, रात तक हरी कथा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, एक साल तो गया, अगले साल में थोड़ा और भक्ति आपके कर पाऊंगा मैं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और लोगों को भी अच्छी बुद्धि मिले, जाए वो इतना पाप कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा दिमाग में कुछ प्रकाश पड़ेगा, उनके कुछ जीवन में उसका कुछ घटना वटना होगी तो उनको भी कुछ थोड़ा सा नॉलेज आएगा कि ये नहीं करना है अपने को। लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं, कितने बोर्ड लगे हुए भक्त हमारे सृष्टि के अंदर, यही इतने छोटे से मेरा रोड के अंदर कितने बोर्ड लगे हैं, 31 दिसंबर डांस पार्टी, ये पार्टी, हर जगह पे कलरफुल बोर्ड लगे हुए हैं। बॉम्बे में तो कितने बोर्ड लगे हुए हैं, फिल्म स्टार के साथ, VIP लोगों के साथ में बोर्ड लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है ये पूरा। आओ तुम लोग पापों की व्यवस्था करके रखिए, आओ पाप करने को आ जाओ, इतना उसका फी है, हाँ खुशी मिलेगी आपको बहुत ऐसा। लेकिन आप जानते नहीं है कि ऐसा एक रात के अंदर वो जन्म जन्मांतर का पाप का तैयारी करते हैं पूरी। आगे आने वाले कितने जन्म हमारे कुत्ते बिल्ली के जानवर के होंगे, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं एक रात के अंदर, एक के रात के अंदर किए हुए काम की वजह से कई जन्मों तक दोबारा आएंगे वो। ऐसे जितने साल जिएंगे उतनी बार इतनी पार्टियां करेंगे, ऐसा माहौल है दुनिया में, सब अज्ञान का अंधेरा है पूरा, लोगों को पता ही नहीं है, कहते हैं पैसा है तो उड़ाओ उसको, मजा करो। लोग बोलते हैं किसने आगे देखा है, कौन कहता है पुनर्जन्म है, कौन कहता है भगवान है, सब बकवास है, मजा करो। लेकिन भगवान है या नहीं है इसको मानने या न मानने से कुछ नहीं बिगड़ता है, जो है वो है ही, हमारे न मानने से तो बदलता नहीं है। ट्रैफिक का रास्ता हमने तोड़ दिया, मतलब किधर भी मामा दिखता नहीं है, सिग्नल तोड़ो चले जाओ, तोड़ दे तोड़ के आगे जाएंगे तुरंत, ऐसा आगे आएगा वो तुरंत पकड़ेगा आपको, लाइसेंस नहीं लेगा आपका। अरे आपने अभी तो कहा था ये सब झूठ है, ट्रैफिक में बिलीव नहीं करता हूँ मैं, कोई पुलिस वाले को होता नहीं है, ये सब ऐसा ही लाइट लगा के रखा है, हम लोग नहीं मानते उसका, हम लोग तोड़ के चले जाते, लेकिन जाएंगे तुरंत पकड़े जाएंगे। तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ पुलिस खड़ा है, किस पेड़ के नीचे खड़ा है, किस गाड़ी के पीछे खड़ा है, मालूम नहीं पड़ेगा आपको। आप तोड़ेंगे तुरंत सामने आके आपको पकड़ेगा वो, सब आपका लाइसेंस छीन लेगा, सबको नंबर ले लेगा, फाइन करेगा आपको, कल कोर्ट में आओ बोलेगा और तकलीफ करेगा। उस तरह से अरे भगवान नहीं है, ये दुनिया में क्या है, किसने देखा है, जन्म है कि नहीं है, मजा कर लो पाप कर लो, कुछ नहीं है, कुछ हिसाब किताब नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जब मृत्यु होती है ना तो यमदूत आते हैं, वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, यमदूत आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय संघे, ये बचपन में बहुत एक बार बीमार हो गए थे, बहुत भयंकर बीमार हो गए थे, तब उन्होंने यमदूत का दर्शन कर लिया था, यह हकीकत है। और जब वो आदमी हरे कृष्ण के भक्त बने तो भागवतम के अंदर उन्होंने अजामिल की कहानी पढ़ी, और अजामिल की कहानी के अंदर वो पिक्चर लगे हुए हैं यमदूत के, तब उन्होंने कहा कि इनको तो मैंने देखा है, मेरे बचपन की बीमारी, मैंने उनका दर्शन किया हुआ है। ऐसे हमारे मंदिर में 3 भक्त हैं जिन्होंने दर्शन किया हुआ यमदूत का, तो उनको अगर पूछेंगे अरे क्या यमदूत बकवास करता है, इनके यमदूत कुछ है नहीं, तो बोलेंगे आप मानो या ना मानो मैंने दर्शन किया उनका, मुझे पक्का विश्वास है कि वो आएंगे, अगर मैं पाप की करूँगा जिंदगी भर तो एंड में आएंगे मुझे उठाने के लिए वो, और हम लोग लेके जाएंगे अच्छी तरह पीटने के लिए लेके जाएंगे, अच्छी तरह से दंड मिलेगा, कोई छुटकारा नहीं है उसका। आप सोचते होंगे अजमल कसाब को फांसी दे दिया तो अभी वो हो गया उसका खत्म, कुछ खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है, इस दुनिया का फांसी हो गया उसको, आगे जाकर उसको यमदूत का सामना करना है उसको, एक साथ में इतने लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया उसने। हाँ हम लोग बोलते हैं कि 166 मरे, लेकिन 166 के जो जुड़े हुए लोग थे वो कितने दुखी हो गए, किसी का पिताजी, किसी का माताजी, किसी का बच्चा मर गया होगा ना, कितना दुखी हो गए, अभी भी तड़पते होंगे वो लोग। कितनी पत्नियों का उस पेपर में आता है न्यूज़ कि हमारी पत्नी शहीद हो गए, हमारी पत्नी शहीद हो गए, और क्या क्या नाम है कर करे, कितना दुख है उनको अभी भी उस बात का, 4 साल बीत गए तो क्या इस सब पाप से वो मुक्त हो जाएगा एक फांसी देने से, नहीं ये शरीर खाली खत्म हो गया उसका, आगे जाकर उसकी आत्मा को लेके गए यमदूत लेके गए होंगे यमराज के राज में, पूरा हिसाब किताब करेंगे उसको, जन्म जन्मांतर तड़पाएंगे उसको जब तक उसका पाप खत्म नहीं होता है। उसको लगा होगा कि हमने तो बड़ा काम कर लिया, उसको बताया था वहां से तुम ये करोगे ना तो अल्लाह के राज्य में जाओगे, ये जिहाद है और ये सब करने से तुम निश्चित रूप से अल्लाह के राज्य में जाओगे, अल्लाह का कृपा प्राप्त करोगे, अल्लाह की रहम प्राप्त करोगे। लेकिन सब अल्लाह ने कभी ऐसा कहा नहीं, किधर भी नहीं कहा है कि तुम मेरे बंदों को मारो और तुम मेरे जन्नत में चले जाओगे। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसे लोगों को बहकाते हैं अज्ञान से और फिर यमराज के मुंह में जाकर भेजते हैं उनको जन्म जन्मांतर का कष्ट प्राप्त करने के। तो हमको ये समझना चाहिए कि जीवन बहुत अनिश्चित है, समय बीतते जा रहा है और उस समय बहुत कीमती है। उस समय में भगवान के विषय में रुचि पैदा करना, हमारे भजन को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो कब किसका फटका पड़ेगा कोई नहीं कह सकता है, फिर हम रोते बैठेंगे। मरीज कहते हैं हमको, अरे हमने तो जीवन भर में भजन नहीं किया, सिस्टर हम पर भगवान नाराज़ है क्या? सिस्टर मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम, क्या नरक में जाएंगे, हमको भगवान दंड देंगे क्या? हमने उनका भजन नहीं किया, आपको बहुत बार बताया गया था। तो सिस्टर क्या बोलेगी, वो समय तो है नहीं आपका, समय तो है आपका, जब समय था तो आपने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं, तो बहुत समय था, लेकिन अभी आप जग रहे हो और डर रहे हो, क्या कर सकते हैं उसके लिए। जैसे बच्चा बोल रहे मम्मी मुझे इसका एक भी प्रश्न नहीं आता है, कल तो एग्जाम है। मम्मी बोल रही मैं साल भर कहा था पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तू खेलने में बिजी था, टीवी देखने में, मोबाइल खेलने में और कंप्यूटर में गेम खेलने में पूरा समय बिताया, अभी रो रहा है बैठ के। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फेल होना ही है तुमको, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय हाथ में है बहुत कुछ कर सकते हैं, समय जाने के बाद में कितना भी मत्था पटकेंगे पत्थर पर रोएंगे कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। बोले तब मुझे पता चला था तो मैं 20 साल का था, अभी आज 60 साल की उम्र में मर रहा हूँ, 40 साल थे मेरे पास लेकिन मैंने ऐसे ही गंवाया उसको, कुछ भी नहीं किया उसको, तो क्या करेंगे फिर। अभी जो नियम है वो लागू है आपको, नहीं तैयारी है तो वापस आ जाओ, फिर जन्म लो, फिर सड़ो यहाँ पर, फिर मरो, फिर तकलीफ करो। प्रकृति का नियम है, कोई नहीं डाल सकता उसको। इतना बड़ा आदमी होगा ना, भारत का प्रधानमंत्री होगा, अमेरिका का अध्यक्ष होगा, वही रूल है उसको भी। वो सिगरेट पिएगा तो उसके फेफड़े खराब होंगे, वो भी उसके लिए भी वही रूल है जो आपके लिए भी वही रूल है। वो सिगरेट पिएगा तो उसके फेफड़े भी खराब हो जाएंगे, आप पिएंगे तो आपका फेफड़ा भी खराब हो जाएगा। प्रकृति का नियम आप कितने बड़े हैं वो देखकर बदलता नहीं है, प्रकृति का नियम सेम रहता है। अब मृत्यु के सामने कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है, जितना बड़ा होता है वो सिरा तान के चलता है, मृत्यु के सामने सब लोग आड़े होके चलते हैं कंधे पर, है ना। प्रधानमंत्री मरेगा तो कैसे जाएगा, आड़ा होकर लोगों के कंधे पे जाएगा। अमेरिका का अध्यक्ष मरेगा तो भी वो आड़ा होके कंधे पे जाएगा या गाड़ी में जाएगा, लेकिन आड़ा होके जाएगा, खड़ा होके जाएगा क्या? तो खड़ा होके कितना भी गर्व करेंगे वहाँ पर आड़ा होना पड़ेगा आपको। इसलिए इस समय का प्रभाव को देखना समझना सीखो, तब जाकर हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार हो, अच्छा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुकारते रहो, सहायता मांगते रहो और जीवन को चलाते रहो, फिर निश्चित रूप में अंत में भगवान आएंगे, यम दूतों को भगा देंगे और आपको लेकर अपने धाम में लेके जाएंगे। फिर आपको लगेगा अच्छा हो गया, 10-15-20 साल कष्ट के यहाँ पर बहुत तकलीफ हुई लेकिन अच्छा हुआ, भगवान पे दिल लगाया। इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि वो यमदा भयंकर दूत तो आए थे दूर से, भगवान ने भगा दिया उनको और हमको लेकर अभी अपने धाम में लेके जा रहे हैं। वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वहाँ जन्म नहीं है, वहाँ कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर आराम से रहो, कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत साल मेहनत किया यहाँ पर भगवान के भजन में, थोड़ा बहुत तैयारी किया, एंड रिजल्ट ये हो गया कि जा रहे हैं भगवान के पास। यही हमारे आपके लिए नए साल की शुभकामना है कि आप सब लोग नए साल के उपलक्ष्य में और थोड़ा गंभीर बने भगवान के विषय में। हाँ, जीवन में कुछ घटना घटेगी यहाँ वहाँ की, लेकिन आपका ध्यान भगवान पर नहीं हटेगा, भगवान से भी नहीं हटेगा, और अधिक भगवान के पास में जाएंगे और अधिक उनका नाम जपेंगे और उनके भक्तों की सेवा करेंगे और उनकी सेवा करेंगे और उनका उपदेश समझने का प्रयास करेंगे और जीवन को शुद्ध करेंगे। यही हमारे लिए, हमारे आपके लिए शुभकामना है कि आप सब लोग कोई भी यहाँ से मरने के बाद में लौट के नहीं आए इस दुनिया में कष्ट भोगने के लिए, आप में से कोई लौट के नहीं आए। प्रभुपाद जी का और कृष्ण का आपका परिचय हुआ है तो आपको यहाँ से जाना ही है भगवान के धाम में। यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सबका बहुत धन्यवाद है, आपने प्रश्न नहीं पूछा फिर भी आपने आपको जवाब दे दिया। हरे कृष्ण।